नव सृष्टि की रचना ईश्वर का सर्वोत्तम कर्तव्य है और इसके लिए कुछ बेशकीमती आत्मा रूपी रत्नों का सृजन करके उन्हें दिव्य गुणों से तराशते हैं ताकि दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो सके। ऐसे ही दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति आदरणीय चक्रधारी दीदी जी हम सभी के समक्ष हैं। हम सभी आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वाहा किया खुद को इन परवानों ने बड़े फख्र से। इनकी खूबियों को हम क्या बयां करें, लिखी जाएगी जब इनकी इनके समर्पण की कहानी, तो इतिहास भी खुद को दौलतमंद पाएगा, इतिहास भी खुद को दौलतमंद पाएगा। आपका जन्म 18 अगस्त 1942 को अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ। दिल्ली के आईपी कॉलेज से आपने राजनीतिक शास्त्र में स्नातक किया। उसके बाद सन 1960 में आदरणीय गुलजार दादी जी और जानकी दादी जी की प्रेरणा पाकर हाथ शिव बाबा के हाथों में सौंप दिया और अनवरत सेवाओं में समर्पित हो गईं। साकार मम्मा बाबा की पालना में पली आदरणीय दीदी जी विश्व के प्रथम सेवा केंद्र कमला नगर में वरिष्ठ भ्राता जगदीश जी के अंग संग रहकर ईश्वरीय सेवाओं को नया आयाम देती रहीं। प्राण प्यारे बाप दादा ने रशिया एवं बाल्टिक देशों की सेवाओं के लिए आपको सूत्रधार बनाया। वर्तमान में आप दिल्ली जोन की मैनेजिंग कोर कमेटी के आधार स्तंभों में से एक हैं और शक्तिनगर तथा उससे संबंधित सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के विमेन विंग की चेयरपर्सन हैं। आज हम आपके मुखारविंद से सुनेंगे, विषय है श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन की गहराई, श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन की गहराई। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। श्रेष्ठ योगी और तपस्वी जीवन, ये शब्द सुनते ही साकार प्यारे बाबा सन्मुख आ जाते हैं। परम श्रेष्ठ योगी जानना हो, तपस्वी जानना हो, तो साकार बाबा के एक एक सेकंड के आध्यात्मिक जीवन से हम बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। जिन्होंने ईश्वर का एक भी महावाक्य कभी मिस नहीं किया, धन्य थे वो जिनके मुखारविंद से स्वयं सर्वशक्तिवान ने ज्ञान का उच्चारण कर प्रथम उन्होंने सारे ज्ञान को सुना और तत्पश्चात अन्य बच्चों ने सुना। बच्चों ने हो सकता है कभी कोई महावाक्य अपनी अलबेलाई के कारण मिस भी किया हो, लेकिन साकार बाबा ने एक अक्षर भी मिस नहीं किया। और योगी जीवन क्या जीवन होते हैं, वो उन्होंने अपने साक्षात जीवन से हम सब बच्चों को प्रेरणा दी। कहते एक होशियार विद्यार्थी वही है जो क्लीन और क्लियर माइंड से दक्षित होकर के पढ़ाई को ठीक से पढ़ता है, और पढ़ता ही नहीं है, उस पढ़ाई में दिए हुए होमवर्क को पूर्ण रूपेण अपने जीवन में उतारता है, और अपने जीवन को उन महावाक्यों का एक उदाहरण बनाकर रखता है, जिसका मैं आपको प्यारे बाबा का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक बार मैं बाबा के कमरे के साथ वाला कमरा ही था, जहां बाद में मुन्नी बहन ने अपनी कुछ सौगातें रखने शुरू की थी, लेकिन बिल्कुल साथ वाला कमरा जो दरवाजा अभी बंद हो चुका है वहां का, वो दरवाजा उस कमरे में ही खुलता था और मैं उसी कमरे में सोई हुई थी। मैंने देखा कि बाबा टेबल लैंप जला करके कुछ कागज पकड़े हुए थे, जिन पर कुछ नोट कर रहे थे, और टेबल लैंप के ऊपर ब्लू कलर का, आज भी मेरे सामने वो दृश्य आता है, एक मोटा टॉवल डाला हुआ था। वो भी किस लिए डाला था कि बाहर सोए हुए बच्चे डिस्टर्ब ना हो इस लाइट से। मैंने प्रातः क्लास के पश्चात बाबा से कहा, बाबा आप रात को टेबल लैंप जला करके कुछ लिख रहे थे, तो बाबा ने सर्वप्रथम मुझे ये समझाने दी कि बच्चे वो रात नहीं था, वो सुबह प्रातः 4 बजे थे। क्या तुमको टेबल लाइट डिस्टर्ब की? मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं की, क्योंकि बाबा ने पहले ही टॉवल डाल के उस लाइट को वहां तक सीमित रखा था ताकि वो इधर उधर लाइट ना छाए। तत्पश्चात बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा ने कल होमवर्क जो दिया था, वे बाबा सुबह होमवर्क कर रहे थे, अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मैं बच्चों से कैसे पूछ सकता हूं कि बच्चे आपने होमवर्क किया। तो नंबर 1 विद्यार्थी जिसको कहेंगे, प्यारे बाबा के महावाक्य ही नहीं सुने उन्होंने, लेकिन एक एक महावाक्य को अपने जीवन में अपनाया, और नंबर 1 विद्यार्थी बनकर हम बच्चों को दिखाया। आज हम बच्चे अपने आप से पूछें, बाबा कई बातें ऐसी कहते हैं कि बच्चे ये बात सारा दिन ध्यान में रखना, उठते बैठते इस बात का स्मरण करना, इसका स्वरूप बनना। सुन लेते हैं, नोट भी कई बार कई बच्चे कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सभी वो नहीं करते जो साकार बाबा करते थे, वो हमने बाबा के जीवन से देखा। आप सबको शायद ये विदित होगा कि शुरू शुरू में 4 बजे का योग का टाइम नहीं होता था। बाबा कहते थे योग का कोई समय थोड़ी होगा, बच्चे बाप और बच्चों का संबंध तो परमानेंट संबंध है, प्रति पल प्रति क्षण बच्चों को बाबा की याद रहनी चाहिए। तो कोई पूछता था दादियों से कि कितनी देर आप बाबा को याद करते हो, तो उनका उत्तर यही होता था, ये पूछो कब हम भूलते होंगे, भूलते ही नहीं तो याद कितनी देर करते हैं। इस कदर बाबा ने अपने बच्चों के हृदय में, बाप दादा ने शिव बाबा की याद को सब बच्चों के हृदय की छाप बना दी। लेकिन धीरे धीरे जब सेवाएं बढ़ने शुरू हो गई, तो बच्चे सेवाओं की तरफ ज्यादा बढ़ने लग गए। योग का इतना चार्ट नहीं बन पाता था। तब बाबा ने प्रातः 4 बजे योग का समय निश्चित किया और मैं स्वयं जब सुना कि प्रातः 4 बजे बाबा स्वयं गद्दी पर बैठ करके अपने बच्चों को योग कराते हैं तो मैं खास मधुबन में आई कि मुझे बाबा योग कराते हैं प्रातः है, वो समय का अनुभव और आनंद अवश्य लेना है। 4 बजे से 5-7 मिनट पहले ही हॉल फुल हो जाता था, चाहे जितने भी बच्चे थे, सीजन था 250 के लगभग बच्चे होंगे और सारे बच्चे 5-7 मिनट पहले सब बैठ चुके होते थे। बाबा एग्जैक्ट 4 बजे एंटर करते थे हॉल में और एंटर होते ही बैठकर सब बच्चों को साकार देते थे। जैसे एक एक बच्चे को चुन चुन करके लाइट और माइट दे करके बच्चों की शक्ति को बढ़ा रहे हो। कुछ समय इस प्रकार बाबा बैठकर योग कराते और उसके पश्चात बाबा खड़े हो जाते और बाबा को खड़ा देखकर सभी बच्चे खड़े हो जाते। फिर बाबा लंबे तो बहुत थे तो बाबा खड़े होकर सभी बच्चों को पुनः दृष्टि देते। कुछ समय इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को दृष्टि देते हुए योगस्थ स्थिति में स्थित करते। कुछ ही क्षणों में बाबा का इशारा होता कि सभी बच्चे बाहर चले, हिस्ट्री हॉल से बाहर निकल जाते बच्चे और बाबा उस हिस्ट्री हॉल की बाहर की सीढ़ी जहां से अंदर जाते हैं उस सीढ़ी पर खड़े हो जाते और खड़े होकर सभी बच्चे जो बाहर खड़े योगस्थ स्थिति में बाबा की तरफ निहार रहे होते, बाबा उनको दृष्टि से निहाल करते हुए कुछ समय ऐसे ही योग का अनुभव कराते। कुछ समय के पश्चात बाबा सीढ़ियां उतरते और चल देते बाहर की तरफ, सभी बच्चे पीछे पीछे बाबा के चल देते। इतने बच्चे चलते थे लेकिन कोई पांव की आवाज नहीं होने देते थे, बहुत साइलेंस में जाते थे। आपने देखा होगा एक तरफ मिनिस्टर्स क्वार्टर्स आते हैं, एक तरफ नक्के की तरफ जाने का रास्ता है। ये चौराहे में एक जगह बनी हुई थी जो थोड़ी मुंडेर सी बनी हुई थी, बाबा उस पर खड़े हो जाते थे क्योंकि एक बल्ब जो कॉर्पोरेशन की तरफ से लगा हुआ था वही बल्ब जल रहा होता था सड़क पर। बाबा वहां खड़े होकर के सभी बच्चों को पुनः दृष्टि देते और सभी बच्चे जैसे कि लाइट और माइट का स्वरूप बन करके बाबा की उन शक्तियों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धन्य समझते हुए ऐसे योगस्थ खड़े होते। कुछ क्षणों के पश्चात बाबा उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरते और घर की तरफ मुड़ जाते। सभी बच्चे बाबा के साथ साथ घर की तरफ जाते। एग्जैक्ट अंदर पहुंचते हुए 4:45 बज जाते थे। ये 4 बजे प्रक्रिया प्रारंभ होती थी और 4:45 बजे तक ये प्रक्रिया संपन्न होती थी। जो बाबा ने हमको सिखाया कि बैठते उठते खड़े होते चलते फिरते कैसे बच्चे बाबा को याद करें। इस प्रकार बाबा ने प्रातः 4 बजे का योग प्रारंभ किया और हम उस समय इस योग का रसा स्वादन करने के लिए चारों तरफ से भाई बहने आते थे, क्योंकि बाबा ने न केवल बच्चों को ज्ञान सुनाया लेकिन योग युक्त होकर बच्चों को योग युक्त स्थिति में स्थित होने का प्रैक्टिकल पाठ भी पढ़ाया। इस प्रकार प्रातः 4 बजे का योग शुरू हुआ। उसके पश्चात तो कुछ दिन ऐसा चला जब उठते बैठते चलते फिरते खड़े होते बाबा को याद करना है, फिर बाबा ने स्थिर होकर बैठकर ही बच्चों को योग कराया। ऐसे 4 बजे के योग का शुभारंभ हुआ था। तो मैं कहूंगी बाबा वो योगी और तपस्वी थे जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल कदम कदम पर चलाया और श्वास श्वास ईश्वरीय सेवाओं में देकर अपने बच्चों को बाप समान बनाने का हर समय प्रयत्नशील रहे। ऐसे बाबा की कई बातें सामने आती हैं। एक बार बाबा बच्चों को लेकर बाहर पहाड़ी की तरफ घूमने जा रहे थे तो बाबा खड़े हो गए, सभी बच्चे भी खड़े हो गए। तब बाबा ने पूछा बच्चों से, बच्चे गाय चराने वाला जब गाय चराने ले जाता है तो वो ग्वाला आगे चलता है या ग्वाला पीछे चलता है? तो सभी बच्चों ने कहा कि गाय आगे चलती है ग्वाला पीछे चलता है उन गायों को आगे ले जाने के लिए। तब बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, अभी तुम सब बच्चे आगे हो जाओ और इन चैतन्य गैयों का ग्वाला पीछे चलेगा। और बाबा पीछे पीछे चलने लगे और बच्चे आगे आगे चलने लगे। बाबा ने पीछे से महावाक्य उच्चारण करने शुरू किए। अब जब पीछे बाबा महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं तो आगे चलने वाले बच्चे बाबा को पीछे मुड़ करके ऐसे देखते हुए चल रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हालांकि सुनते तो कानों से हैं लेकिन सुनाने वाले को देखना जरा अच्छा लगता है। अब मैं सुना रही हूं, आपके आगे कोई खड़ा हो जाए तो आप कहेंगे जरा पीछे हटिए, हमें सुननी है क्लास। तो इस प्रकार बाबा को सब बच्चे ऐसे देख रहे थे और देखते हुए चल रहे थे। फिर बाबा खड़े हो गए और खड़े होके बाबा ने कहा, बच्चे तुमने देखा भक्ति में चित्र बनाते हैं कि जब भगवान मुरली बजाता था तो गैया घास चरना छोड़ करके मुरली की तान सुनती थी। वास्तव में वो पूंछ वाली गैया नहीं थी, वो तुम ही वो गैया हो जो आपसी बातचीत सब कुछ छोड़ करके अब तुम गौओं के गोपाल की मुरली सुन रहे हो। वो श्री कृष्ण नहीं थे, वो स्वयं सर्वशक्तिवान श्री कृष्ण के 84वें अंतिम जन्म में प्रविष्ट होकर उन्होंने अपनी चेतन गैयाओं को ज्ञान सुनाया था। वो पूछ वाली गैया क्या जाने मुरली की तान, मुरली की तान तो तुम गैया समझती हो, इसलिए चल भी रही हो लेकिन मुड़कर देख भी रही हो। जो गैयाओं का दृश्य दिखाते हैं कि गैया पीछे अपना घास चरना छोड़ करके मुरली की तान सुनने लगती थी, वो गैया नहीं तुम ही गैया थी। तो प्रैक्टिकल में जो भक्ति में होता था बाबा, वो दृश्य हमको कई बार दिखाते थे कि भक्ति में इस प्रकार होता है। वास्तव में बाबा सुनाने वाला मुरली सुना रहा है और तुम चैतन्य मेरे बच्चे जो ज्ञान घास खाते हो, जुगाली करते हो और उसी ज्ञान घास को पचा करके अन्य आत्माओं को ज्ञान से प्लवित करते हो, ये तुम्हें वो बच्चे हो। इस प्रकार बाबा प्रैक्टिकल में हर बात बच्चों को स्पष्ट करके सुनाते थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि बाबा ने कोई टेस्ट नहीं दिया, केवल पढ़ाई ही पढ़ाई की। बाबा हमेशा कहता है ड्रामा बच्चों को बहुत अच्छी तरह याद रहना चाहिए, ड्रामा कभी विस्मृत नहीं हो जाए। कई बार घटना घट जाने के पश्चात, दुखी परेशान हो जाने के पश्चात फिर बच्चों को स्मृति आती है, अरे ड्रामा है, जो हुआ सो हो गया। लेकिन साकार बाबा का मैं एक अनुभव आपको सुनाती हूं, क्योंकि जब सर्दी होती थी तो मधुबन में बहुत सर्दी होती थी, यहां तक कि जून जुलाई में भी हम ऊपर कंबल लिया करते थे। तो सर्दी के मौसम में बाबा कभी बॉम्बे और कभी दिल्ली में चले जाया करते थे, लेकिन अपनी मनोइच्छा से नहीं जाते थे। संदेशी को ट्रांस में जाते ही संदेशी और उसे संदेश देते थे कि अल्माइटी से पूछ कर आओ कि आपका रथ वहां जाना चाहता है, क्या मैं बॉम्बे जा सकता हूं। बाबा कहते थे रथी जाएगा तो रथ जाएगा, अगर रथी नहीं जाएगा तो रथ किस लिए जाएगा। इसलिए रथी रथ रथी से आज्ञा लेकर ही वहां जाएगा। तो एक बार बाबा ने आज्ञा दे दी, हाँ बच्चे तुम बॉम्बे में जा सकते हो। तो बाबा ने पूरी तैयारी करनी शुरू की और स्वाभाविक है कि बाबा जहां जाने वाले हैं उनको अन्य बच्चे जो अन्य स्थानों से आएंगे उनके रहने का भी प्रबंध करना है, खाने पीने का भी प्रबंध करना है, और मधुबन से भी बहुत से बच्चे हैं जो वहां पहले से जाएंगे, यहां तक कि बाबा के कपड़ों की अटैची भी वहां चली गई और पूरी तैयारी वहां हो गई। टैक्सी आ गई बाबा को स्टेशन पर ले जाने के लिए, लेकिन निकलने से पूर्व बाबा ने पुनः हमेशा संदेशी को भेजते थे, संदेशी जाओ बाबा से परमिशन लेकर आओ, छुट्टी लेकर आओ कि आपका रथ बॉम्बे जा रहा है। तो संदेशी ट्रांस में गई और कुछ क्षणों में ही वापस आ गई। वापिस आने पर बाबा ने देखा उसकी तरफ और पूछना चाहा कि बच्ची क्या हुआ। तो उसने कहा बाबा मैं वतन में गई, मुझे वहां बाबा मिले नहीं, क्योंकि अव्यक्त रूप से शिव बाबा प्रवेश होते थे ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में। लेकिन एक लाल झंडा था वो वहां लहरा रहा था, लेकिन बाबा वहां नहीं थे। बाबा ने कहा, बाबा ने अनुमति दी है इसलिए बिना बाबा की परमिशन के बाबा नहीं जाएगा। बच्ची तुम पुनः जाओ और बाबा से आज्ञा लेकर आओ, अगर बाबा की आज्ञा है तो मैं जाऊंगा। संदेशी पुनः वतन में गई, उसने वतन में बाबा को देखा, बाबा से कहा, बाबा बाबा बॉम्बे जा रहे हैं, टैक्सी आ गई है, मुझे आपकी आज्ञा लेने के लिए भेजा है। तो बाबा ने कहा, तुम देख नहीं रही हो सामने कौन सा झंडा लहरा रहा है? कहा, बाबा लाल झंडा लहरा रहा है। बाबा ने कहा, इसका तात्पर्य क्या है? बाबा की अनुमति नहीं है, ये झंडा खतरे का है, बाबा की अनुमति नहीं है। अब बाबा का सामान जा चुका है, वहां सारी तैयारी हो चुकी है, भोजन आदि के सब प्रबंध हो चुके हैं। बाबा ने संदेशी के वापस आने पर कि बाबा, बाबा ने कहा है बाबा की अनुमति नहीं। बाबा ने कहा, ठीक है बच्ची, टैक्सी वाला कुछ समय से खड़ा है, उसको कुछ पैसे देकर आओ, क्योंकि उसने बहुत वेट किया है। और बाबा सेवा केंद्रों पर इत्तला करेंगे कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे, क्योंकि जब बाबा को जाना होता था तब भी सेवा केंद्रों पर इत्तला हो जाती थी, किसी भी बात की लिखा पढ़ी करनी हो, बाबा से कुछ पूछना हो, तो बाबा इन दिनों में फ्लां स्थान पर होंगे, आप पत्र व्यवहार कर सकते हो। और जगदीश प्राता जी कमला नगर सेवा केंद्र पर रहते थे, जाने से भी पहले प्रोग्राम जब बनता था तब भी उनसे फोन करते थे कि मैं बॉम्बे का प्रोग्राम बना रहा हूँ। और जब बाबा को नहीं जाना, वैसे फोन या तो राजस्थान जयपुर से होता था या शायद उदयपुर जोधपुर से होता था, डायरेक्ट लाइन कई बार नहीं मिलती थी, मुश्किल होती थी लाइन डायरेक्ट लेना उस समय। लेकिन बाबा ने फोन किया और डायरेक्ट लाइन दिल्ली की मिल गई, और बाबा का फोन आया, और अचानक उस समय सेवा केंद्र पर मैं ही थी। फोन आते ही मैंने फोन, नेचुरली है जो होगा वो पकड़ेगा, मैंने फोन पकड़ा, हेलो किया, तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची जगदीश बच्चा कहाँ है, बुलाओ। मैंने कहा, बाबा वो कहीं सेवा पर गए हैं। मैं बड़ी खुश हो गई, मैं बाबा से डायरेक्ट बात कर रही हूँ। फिर बाबा ने कहा, गुलजार बच्ची कहाँ हैं, क्योंकि वो भी वही रहते थे। मैंने कहा, उनके साथ वो भी सेवा पर गए हैं। तब बाबा ने कहा, मैं जी बाबा के अलावा दूसरा शब्द नहीं बोल पा रही थी। बाबा ने कहा, बच्चा जब आ जाए बच्चियों को बता देना कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे, और अन्य सेवा केंद्रों पर तुम किसी को फोन कर सको तो कर देना, नहीं तो बच्चा सबको इत्तला दे देगा। तो मैंने एक दो सेंटरों पर फोन कर दिया कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे, बाबा का फोन आया है, बाबा का प्रोग्राम नहीं है बॉम्बे जाने का। मैंने पहले दिल्ली जो मुख्य सेंटर हमारा था, जहां ऑलराउंडर दादी जी उस समय दिल्ली जोन को देखते थे, तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा, बताया जब, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा ये तो मैंने पूछा ही नहीं। दादी ने कहा लाल पूछना तो चाहिए ना, बाबा का प्रोग्राम है वहां का। मैंने गंगी दादी को भी कानपुर में भी फोन मिला लिया, मैंने दो तीन जगहों पर, जब तक आए मैं बड़ी उत्सुक थी इस चीज की कि मैं सबको इत्तला दे दूं, जिसको फोन करूं मुझे यही उत्तर मिले कि क्यों नहीं जा रहे बाबा, अवश्य कोई खास बात है। तो मैंने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन दो दिन के पश्चात बाबा की मुरली आई, दो या तीन दिन के बाद, जिस मुरली में बाबा ने कहा आलमाइटी ने परमिशन दी थी जाना है तो तैयारी थी, आलमाइटी ने ये आज्ञा दी कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मेरे कई बार बच्चे बुद्धू बन जाते हैं, पूछते हैं बाबा क्यों नहीं जा रहे। मैं तो सुद्धू बन गई, मैंने तो पूछा ही नहीं, मैं कोई इतनी होशियार तो नहीं थी, लेकिन मैं इस खुशी में कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ, तो मैंने ये पूछा ही नहीं कि बाबा क्यों नहीं जा रहे, जबकि मुझे सब पूछे कि बाबा क्यों नहीं जा रहे। तो जब बाबा की मुरली में आया कि बच्चे ये कोई पूछने की बात है, आलमाइटी की आज्ञा है तो जा रहा है रथ, आलमाइटी की आज्ञा नहीं है तो नहीं जाएंगे, इससे पूछने की क्या आवश्यकता है कि क्यों नहीं जाना। आप सोचिए निश्चय किसको कहते हैं। निश्चय माना निश्चित, निश्चिंत, उसे कोई प्रश्न नहीं उठता है। तभी बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि तो मेरे कुल 8 बच्चे निकलते हैं, बाकी के निश्चय में भी नंबर वार हो जाते हैं। निश्चय का मतलब क्या है? आलमाइटी ने जो कहा वो सत्य है, आज अगर आपकी बुद्धि में नहीं आ रहा है तो कल आपकी बुद्धि की दिव्यता जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी बाबा की हर बात आपको समझ में स्वतः ही आती रहेगी, क्योंकि सत्य पिता जो बता रहा है वो सत्य बता रहा है। उसके बात में संशय करना या क्वेश्चन करना, पहले तो बाबा ने ऐसे कहा था, अब बाबा ऐसे कहता है, ये तो बाबा जानता है ना। जिस पर मैं अपना अनुभव कई बार सुनाती हूं कि जब सेवाएं शुरू हो गई तो शिव बाबा के कैलेंडर बनते थे ओवल शेप के, और ओवल शेप के प्लास्टिक के भी बनते थे चित्र, और ये सब तरफ बाबा का यही बताते थे परमात्मा ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप नहीं कहते थे, ज्योति स्वरूप है। लेकिन काफी समय के पश्चात जब सेवाएं शुरू हो चुकी थी और ये कैलेंडर बन चुके थे, तो एक दिन क्लास में मुरली चल रही थी, मुरली के मध्य बाबा ने कहा कि आज बाबा अपने बच्चों को अपना परिचय देंगे। आप सोचिए 14 वर्ष तक तपस्या हुई, सेवाओं का शुरुआत हो चुका है, और आज आलमाइटी साकार तन द्वारा बोलते हैं कि बाबा अपना परिचय देंगे, तो सब बच्चे आश्चर्यचकित होकर बाबा की तरफ देख रहे थे। इतने में बाबा ने लच्छू बच्ची जो बाबा को अटेंड करती थी हर समय, कहा बच्ची जाओ बाबा के ऑफिस से एक प्लेन पेपर लेकर आओ, और बाबा की डिब्बी होती थी चांदी की, जिसमें पेंसिली होती थी, तो बाबा ने कहा जो बारीक नोक की घटी हुई पेंसिल होगी वो पेंसिल भी लेकर आना। मैं आज बच्चों को अपना परिचय दूंगा। उस समय बाबा ने लच्छू भागती भागती गई और भागती वापस कागज और पेंसिल लेकर आ गई। बाबा ने कागज को हाथ में पकड़ा और पेंसिल को ऐसे पकड़कर कहा, बच्चे आज बाप बच्चों को अपना परिचय देता है, हर बात एकदम बताने की नहीं होती है, ज्ञान स्लो प्रोसेस में आगे आगे बढ़ता चला जाता है। तो बाबा बच्चों को आज अपना परिचय देगा। तो बाबा ने कागज को ऐसे पकड़ा और पेंसिल को ऐसे पकड़ा और सभी बच्चे देख रहे थे आज क्या बनने जा रहा है। तो बाबा ने ऐसे किया, क्या बच्चे दिखाई दे रहा है? सब ने कहा नहीं बाबा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाबा ने कहा अच्छा, मैं फिर बनाता हूं, देखो। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे थे फिर वो पेंसिल कैसे किया, अब पता नहीं लगी कि नहीं लगी, लेकिन कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। फिर बाबा ने ये कहा, बच्चे बाप ज्योति स्वरूप है, जिन्हें इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, उसे दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता, ये चरम चक्षुओं से देखने योग्य नहीं है। बाबा का स्वरूप ज्योति बिंदु है। अब जब क्लास पूरी हुई तो बाबा अपने कमरे में कुछ बच्चों के साथ बैठते थे, उसे चैम्बर की क्लास कहते थे। तो चैम्बर की क्लास में जगदीश भ्राता जी आए तो बाकी सब बच्चे पीछे पीछे हो जाते थे, क्योंकि कोई विशेष बात करने आए होंगे। तो जगदीश भ्राता जी ने कहा, बाबा जो हमारे ओवल शेप के चित्र बने हुए हैं, हम शिव बाबा का परिचय यही देते हैं, ये लाइट है। तो बाबा ये चित्र सारे समाप्त कर दिए जाएं और प्लास्टिक की जितने बने हुए चित्र सब खत्म कर दे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, खत्म नहीं करना, इस ओवल शेप चित्र के बीच में एक पॉइंट डलवा लो, स्टार जैसा एक पॉइंट है। आप ज्यादातर वो हैं बाबा के बच्चे जो उस समय आए जब पॉइंट डल चुका है, पहले पॉइंट नहीं होता था, केवल ओवल फॉर्म शिव बाबा। तो ये फर्टाइल लाइट है बाबा की, लेकिन बाबा सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। जब बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है, बाबा ने भी कहा हाँ बच्चे, या तो पारे मिसल है, ये तो तिरकनी सीढ़ी है, इसमें बच्चों को मेहनत करनी होगी, मन बुद्धि को उस ज्योति बिंदु में टिकाने की। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, अगर मुश्किल लगता है तो बाबा इसे सरल करते। तो बाबा ने 36 किरणें जो आपने देखी शिव बाबा की, ज्योति ओवल शेप बीच में बिंदु है और चारों तरफ बाबा के गुण हैं, यह शक्तियां हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता, दुख करता सुख करता, 36 गुणों का जो चित्र है, बाबा ने ये चित्र बनवाया। बाबा ने कहा बच्चे, गुणों को याद करना भी गुणी को याद करना है। किसके गुण हैं? यो सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु के गुण। इस प्रकार गुणों को स्मृति में लाएंगे तो गुणी की स्मृति आएगी। ऐसे बाबा ने, फिर कई बच्चों ने कहा हमें तो बाबा आपका यही स्वरूप सामने देखने में बस आता है। तो बाबा ने कहा ये भी किसका रथ है, ये तन भी कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये वो ज्योति बिंदु स्वरूप है जो ब्रकुटी में बैठ करके अपने इस बच्चे के तन का इस्तेमाल कर रहा है। चाहे इसको भी देखो, लेकिन इसको देखते भी इस तन को ना देखना। इस तन में जिसको देखना चाहते हो वो तो ज्योति स्वरूप है जो इन नैनों से आपको अपनी शक्तियां दे रहा है। तो इस प्रकार बाबा ने अपने स्वरूप की अपने बच्चों को स्वयं पहचान दी और ये भी कहा कि जैसे बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे बच्चे तुम भी ज्योति बिंदु स्वरूप हो। बड़ा स्वरूप नहीं हो सकता है, अगर बड़ा हो तो यहाँ घोड़ा निकल आए, एक ऐसे मास ऐसे फट जाए, लेकिन इतना सूक्ष्म स्वरूप है जो मिक्स है, पता नहीं चलता कि यहाँ आत्मा है। जैसे परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, ऐसे तुम बच्चे भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हो। अपने स्वरूप को पहचानो, बाप के स्वरूप को जानो, इसी का नाम तो योग है। जब तक स्वयं को आत्मा नहीं समझा, बाबा से बुद्धि का योग कैसे लगेगा? देह समझने से देहधारियों की तरफ बुद्धि का योग जाएगा, और देहधारी को अगर देखेंगे तो एक ही नजर में सारी देह दिखाई नहीं देगी। कभी मस्तक की तरफ ध्यान जाएगा, कभी मुख की तरफ ध्यान जाएगा, कभी इधर ध्यान जाएगा। बच्चे मन को एकाग्र करने के लिए मैं ज्योति बिंदु हूँ और तू भी ज्योति बिंदु है, ये प्यारे बाबा ने हमें अपने स्वरूप की स्मृति दी और हम बच्चों को हमारे स्वरूप की स्मृति थी। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि बाबा अपने बच्चों को कैसे मदद करता है, क्योंकि आप में से बहुतों को ये मालूम है कि यज्ञ का एक समय ऐसा भी आया था जिसमें यज्ञ काफी कठिनाई से गुजर रहा था। एक बार का ऐसे भी बात हुई कि कुछ बहनों को लूज मोशन हो गया, लेकिन विश्व किशोर भ्राता जी जो उनके लिए दवाई लाए, उनके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उनके पास केवल एक गोली के पैसे थे, चार बहनों के पेट की दवाई लाने के पैसे नहीं थे। उन्होंने एक गोली लाए, उस एक गोली के चार हिस्से किए और चार हिस्से करके चारों बहनों को खिला दिया और चारों के लूज मोशन ठीक हो गए। ये तो निमित्त था। बाबा अपने बच्चों की परीक्षा भी लेता था, निश्चय का पेपर भी देखता था, किस कदर बच्चे चलते हैं। जब बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चों को केवल मात्र बाजरे की रोटी और लस्सी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, चाहे किसी को लूज मोशन है या बुखार है या टाइफाइड है, लेकिन यही मिलेगा। कुछ बच्चों को मन में संशय आया, हमने मरना है क्या, इतना बुखार है और हम लस्सी पिए और डोडा खाएं। और सचमुच वो बीमार ज्यादा हुए, लेकिन जिन्होंने निश्चय रखा आलमाइटी यज्ञ आलमाइटी का है, जिस हाल में तू रखेगा हम उस हाल में राजी हैं, वो तंदुरुस्ती को प्राप्त हुए, ठीक हो गए। तो एक बार हमारी एक दादी जी, मैं बात वही सुनाने जा रही थी। मैं घड़ी को देख रही हूँ क्योंकि 7:30 बजे दूसरा प्रोग्राम है। तो हमारी एक दादी जी, मैं नाम नहीं बताती अभी, बहुत बीमार थी और इतने बीमार थे कि डॉक्टर उनकी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। बॉम्बे में ले गए लेकिन तब भी डायग्नोज नहीं हो पा रही थी। दादी की तबीयत बहुत खराब थी। दादी ने संदेशीशील दादी, जो हमारी बड़ी दीदी की लौकिक में छोटी बहन थी, वो एक बहुत अच्छी संदेशी थी, उसको बुलाया। कहा, मैंने इतनी शरीर की भोगना भोगी है, अब मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी, आलमाइटी के पास जाओ और जाकर कहो कि आप दवाई देंगे तो दादी दवाई खाएगी और तंदुरुस्त होगी, नहीं तो मैं डॉक्टर की दवाई नहीं खाऊंगी। क्योंकि जिन दिनों में काफी यज्ञ में कमी थी तो आलमाइटी बाबा ने बच्चों को दवाइयां देता था, दवाई मानो ऐसे ही घर का कोई नुस्खा बना करके देता था और बच्चे ठीक हो जाते थे। बच्चों की पालना बाबा ने बहुत की। तो दादी जब गई, संदेश दिया दादी ने बाबा को कि दादी की तबीयत बहुत खराब है और बाबा वो कहती हैं कि अब मैं डॉक्टर की दवाई नहीं खाऊंगी, अब जो दवाई आप मुझे देंगे वही खाऊंगी, चाहे मरूं या जीऊं। तो बाबा ने कहा ठीक है, अगर बच्ची का इतना निश्चय है तो बाबा बच्ची को दवाई देगा। तो कहा बाबा आज देंगे। तो उस दिन बुधवार था, बाबा ने कहा मंगलवार को दवाई दूंगा। अब मंगलवार को दवाई देनी है तो संदेशी ने आकर के दादी को कहा, दादी बाबा ने कहा है मंगलवार को मैं दवाई दूंगा। तो उनको ढाढ़स हो गया। आप सोचिए, जब किसी को ज्यादा तकलीफ होती है और वो भी दर्द का रूप होता है तो बाबा की याद नहीं आ पाती। उस समय उन्हें सहयोगियों के योग के साकाश की आवश्यकता होती। उस समय ये साकाश का रूप अपने प्रकाश से चलता था। तो दादी ने कहा ठीक है, बाबा मंगलवार दवाई देगा। तो दादी बाबा को, जैसे एक होप होती है तो बाबा को याद कुछ कुछ करने लगी। और जब मंगलवार आया तो दादी ने सुबह 4 बजे संदेशी को बुलाया, जल्दी जाओ और मेरी दवाई लेकर आओ। आज तो मंगलवार हो गया। संदेशी गई, उसने क्या दृश्य देखा कि बाबा वतन में हमाम दस्ता लेकर के कूट रहे हैं कुछ। अब सुनिए जरा ध्यान से, ताली पीछे बजाना। कूट रहे हैं और बड़े मस्त हैं। उन्होंने नहीं देखा कौन आया कौन गया, तो वो तैयारी हो रही है। तो संदेशी ने कहा बाबा, तो बाबा ने ऊपर आंख करके देख के कहा बच्चे बोलो। कहा बाबा आज मंगलवार है, मैं दवाई लेने आई हूं। बाबा ने कहा देख नहीं रही हो, बाबा तैयार कर रहा है दवाई, तैयार होगी तब तो दूंगा। और सचमुच हमाम दस्ते में कूट भी रहा था, दिखाई भी दे रहा है। तो संदेशी वापिस आ गई, आके कहा दादी बाबा हमाम दस्ते में दवाई कूट रहा है, अभी तैयार नहीं हुई। और बाबा कहता है 2 दिन के बाद आना। दादी ने कहा अच्छा प्यारे बाबा, तुमने मुझे ये और भोगना देनी है। फिर बाबा बाबा करने लग गए, और क्या करे अब, बाबा के सिवाय कोई नहीं। 2 दिन के बाद संदेशी को कहा जल्दी जाओ, 3 बजे ही उसको उठा दिया, तुम सिर विर धो जल्दी जाओ वतन में। आज 2 दिन तो हो गए, वतन में संदेशी गई बाबा ने पूछा, बच्ची कैसे आई हो? आपने तो कहा था 2 दिन के बाद आना। कहा, बाबा जो आप दवाई कूट रहे थे वो तैयार हो गई होगी, दादी ने भेजा है कि दवाई ले आओ। बाबा ने कहा, वो दवाई मैं इसके लिए थोड़े बना रहा था, वो तो किसी और के लिए बना रहा था। वो तो जिसके लिए बना रहा था उसको मैंने वो दवाई दे दी है। तो बाबा, दादी के लिए? कहा, उसके लिए अभी तैयार नहीं हुई दादी, तैयार अभी नहीं हुई, हो जाएगी तैयार तो दूंगा। अब दादी ने कहा, संदेशी जब उनको पता चला वो दवाई किसी और को दे दी, मेरे लिए नहीं आई, तो कहा, संदेशी मेरी खटिया बाबा के कमरे में लगा दो, अब सिवाय बाबा के मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना, अब शरीर छूटे तो बाबा की गोदी में शरीर छूटे। खूब बाबा को याद, जिस आत्मा को योग नहीं लगा पाती थी, पीड़ा थी, तकलीफ थी, वो बाबा के कमरे में बैठी, आखिर दवाई तो आई नहीं। डॉक्टर को दिखाने का दिन था, डॉक्टर ने चेक किया तो उनके जो तकलीफ थी वो उस दिन डायग्नोज हो गई। शायद उनको 500 तक शुगर जा चुकी थी, कुछ ऐसी बीमारी थी जो डॉक्टर पहले डायग्नोज नहीं कर सके। और फिर उस दिन डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बीमारी को डायग्नोज किया, और डायग्नोज करने पर उन्हें जब दवाई दी तो पहली दवाई पुड़िया मिलते ही दादी को पेन में काफी फर्क आ गया और धीरे धीरे दादी ठीक होने लगी। अब आप कहेंगे, बाबा ने दवाई तो दी नहीं, आपको मालूम है दवाई कितनी दे रहा है? दवाई मंगल को दूंगा, आश्वासन दिया ताकि बच्ची का योग मेरे से लगे, हमाम दस्ते में घोट रहा हूं दवाई, तैयार होगी तो दूंगा, उसको आश्वासन दिया, वो और योग लगा रही है। वो दवाई तो मैंने किसी को दे दी, वो दवाई उसके लिए नहीं है, छोड़ो अब, सिवाय बाबा शिव बाबा के और कोई मेरा रहा नहीं। और बाबा को दादी ने इतना याद किया, इतना याद किया, जिसको योग नहीं लगता था, बीमारी ने अपनी तरफ खींचा हुआ था, वो योग बल के आधार से अपनी बीमारी पर उन्होंने विजय प्राप्त की। और डॉक्टर तो निमित्त मात्र है जिसने दवाई दे दी और उसकी बीमारी को देख लिया। हम कभी समझते हैं शायद ऊपर से दवाई आएगी, अरे ईश्वर के तरीके अपने हैं, उसका तरीका दुनियावी रूप का नहीं होता है, उसके तरीके को समझने की आवश्यकता है। संशय बुद्धि वाले इतने में संशय में आ जाएंगे, कहा था दूंगा, दी क्यों नहीं? अरे दवाई थी यही, क्योंकि योग बल होने से विकर्मों के खाते साफ होने, और जब तक योग बल नहीं होगा विकर्म साफ नहीं होंगे, बाबा कैसे तरफदारी करेगा? जब एक बार ब्रह्मा बाबा ने कहा था, संदेशी जाके बाबा को कहो, इस बाबा को खांसी आती है, अगर खांसी ठीक कर दे तो बाबा को महावाक्य उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बाबा के लिए कहता हूं। तो बाबा ने संदेशी को कहा, जाके बच्चे को कहना कि मैं तो टूटे ढोल से भी काम कर लूंगा, तेरी बीमारी तू जानता है। चलो, बाबा बुला रहा है अपने पास हम सब।